Iran Radio Podcast.
दोस्तों, जो पॉडकास्ट आप सुन रहे हैं वो ईरान रेडियो द्वारा तैयार किया गया है। अगर आप दूसरे विषयों पर भी पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट iranradio.ir/hi पर सुन सकते हैं। यूरोपियों का प्रयास था कि अफ्रीका महाद्वीप में हमेशा गृह युद्ध जारी रहे ताकि वे ज़्यादा से ज़्यादा गुलामों को अपने जाल में फंसा सकें। इसके अलावा जब कभी और जहां कहीं भी उन्हें मौका मिलता था, खुद भी इंसानों का शिकार करते थे। जंगलों के बीच में बनी झोपड़ियां भी इन शिकारियों के लिए अच्छा चारा होती थीं। जो बच्चे इन झोपड़ियों में अकेले होते थे वे आसानी से इनका शिकार हो जाते थे। दोस्तों, दुनिया के इतिहास पर पॉडकास्ट का ये 8वां एपिसोड है। ईरान रेडियो से मैं हूं अहमद अब्बास, आप सभी को मेरा सलाम। एक 11 साल का लड़का जो अंग्रेजों के हाथों गुलाम बना था, वो अपनी ग़ुलामी के शुरुआत के बारे में कहता है, एक दिन जब गांव के सभी बड़े और बुज़ुर्ग खेतों में काम करने के लिए गांव से बाहर गए हुए थे, मैं और मेरी बहन घर में अकेले थे। अचानक दो पुरुष और एक महिला दीवार से हमारे घर में कूदे, हमें दबोचा और हमारा मुंह बंद किया और हमें जंगलों की ओर ले गए। अलग अलग जगहों से शिकार करके लाने वालों को जंगल में एक जगह जमा किया और उन्हें वहां ले गए जहां यूरोपीय शिकारी उनका इंतज़ार कर रहे थे। वहीं से उनकी समस्याओं का कभी न ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। वे हाथी दांत या मसालों को उन गुलामों के कांधों पर लाद दिया करते थे जिन्हें एक ही जंजीर में बांधा गया होता था। जंजीरों में बंधे हुए इन गुलामों को तट तक जाने के लिए कभी कभी 2000 किलोमीटर तक पैदल चलाया जाता था। इस दौरान उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी जाती थीं। ऐसे ही एक काफिले के साथ चलने वाला व्यक्ति बताता है, इन गुलामों के सिरों और बदन पर मौजूद गंदगी को मैं बयान नहीं कर सकता। उनके पूरे जिस्म पर कोड़ों के जख्म थे, मक्खियां और मच्छर उनके इन जख्मों पर भिनभिनाते रहते थे और उनसे खून रिसता रहता था। उनकी निगरानी करने वालों के पास चाकू और भाला होता था। मैंने उन्हीं में से एक से कहा, वे इस हालत में बोझ नहीं उठा सकते हैं। वो मुस्कुराया और बोला कि उनके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं, उन्हें इस काम और इस मौत में से किसी एक को चुनना होगा। मैंने कहा, अगर वे हद से ज़्यादा बीमार पड़ जाएं और चलना उनके लिए कठिन हो जाए तो क्या करोगे? उसने जवाब दिया, फौरन एक बार में काम तमाम कर दूंगा। औरतों में से हर एक के कंधे पर हाथी का बड़ा दांत लदा हुआ था, उनमें से कुछ की गोद में तो बच्चा भी था। मैंने एक गार्ड से पूछा, अगर वे दांत को उठाकर चलने लायक नहीं रहे तो क्या करोगे? उसने कहा, हम एक कीमती हाथी दांत को छोड़कर नहीं जा सकते, हम बच्चे को मारकर उसका बोझ हल्का कर देंगे, पहले हाथी दांत उसके बाद बच्चा। उनके बीच एक ऐसी माँ भी थी जिसके बच्चे को उसकी आंखों के सामने मार डाला गया था। वो जंजीरों में जकड़ी हुई थी और उसके कांधे पर हाथी दांत लदा हुआ था जिसे लेकर उसे सैकड़ों मील चलना था। लेकिन उसकी मुसीबतें यहीं ख़त्म होने वाली नहीं थीं, बल्कि तट पर पहुंचकर और जहाज़ में सवार होने के बाद उसकी समस्याओं का सिलसिला शुरू होगा। तट पर एक डॉक्टर उनका चेकअप करता था और उसके बाद वो उन्हें जहाज़ पर सवार होने की अनुमति देता था। अगर उनका नसीब अच्छा होता था तो उन्हें यूरोप ले जाया जाता था क्योंकि यूरोप तक की दूरी कम थी, लेकिन अगर उन्हें अमेरिका के बाज़ारों में बेचने के लिए ले जाया जाता था तो उन्हें एटलस महासागर का ख़तरनाक सफ़र तय करना होता था, वो भी जहाज़ के तंग और अंधेरे स्टोर रूम में जहाँ बैठने के लिए भी सही से जगह नहीं होती थी। यूरोपीय व्यापारियों ने जहाज में ज्यादा से ज्यादा गुलामों को भरने के लिए स्टोर रूम में लकड़ी के खाने बनवा रखे थे ताकि उनमें गुलामों को भर सकें। ब्रिटेन के बेजूक जहाज को गुलामों को ले जाने के लिए ही बनाया गया था। उसमें खानों की ऊंचाई 80 सेंटीमीटर रखी गई थी। इस तरह से कई हजार किलोमीटर तक के सफर में इन गुलामों के लिए सही से बैठने के लिए भी जगह नहीं होती थी। समुद्री सफर की शुरुआत में ही उनका दिल मतलाने लगता था और वे उल्टी की जगह पर ही बैठने और सोने के लिए मजबूर होते थे। गर्मी और पसीने की बदबू से उनका बुरा हाल हो जाता था। स्टोर रूम के कोने में ही हाजत के लिए एक जगह बना दी गई थी। हर दो लोगों को एक जंजीर में बांधा जाता था। अगर उनमें से किसी एक को हाजत के लिए जाना होता था तो दूसरा भी उसके साथ जाने के लिए मजबूर होता था। जहाज के गुलामों को इस तरह से ठूस कर ले जाया जाता था कि जहाज पर मौजूद गार्ड्स भी डर जाते थे। गुलामों में महामारी फैल जाती थी, जिसकी चपेट में जहाज पर मौजूद दूसरे लोग भी आते थे। जहाज पर मौजूद हर चार यूरोपियों में से एक सफर की समाप्ति तक मौत की नींद सो जाता था। कभी कभी जैसे ही नाविक किसी गुलाम में बीमारी के लक्षण देखते थे, तुरंत उसे दूसरों से अलग करके समुद्र में फेंक दिया करते थे। इन यात्राओं में मरने वाले गुलामों की अधिक संख्या के कारण वे अपनी इस यात्रा को बर्फीले पहाड़ों की लंबी यात्रा कहते थे। गुलामों के खाने के लिए पूरे दिन में सिर्फ आधी अधूरी उबली हुई एक या आधा प्याला मक्का और थोड़ा सा पानी दिया जाता था। अगर मौसम अच्छा होता था तो उन्हें कुछ देर के लिए डेक पर आने और हवा का आनंद लेने की अनुमति दी जाती थी। कुछ गुलाम इस छोटे से अवसर का लाभ उठाते थे और अपनी पीड़ा से छुटकारा पाने के लिए समुद्र में छलांग लगा दिया करते थे। कुछ गुलाम भूख हड़ताल करके अपनी जान देना चाहते थे। व्यापारी उन्हें इतनी आसानी से खोने के लिए तैयार नहीं थे। ये दौर वो था जब यूरोप ज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रगति कर रहा था। उन्होंने यूरोपीय विशेषज्ञों को गुलामों के पेट में जबरन खाना पहुंचाने के लिए उपकरण बनाने का आदेश दिया। ये उपकरण एक बड़ा गैस क्लैंप था, जिसे व्यक्ति के चेहरे पर रखा जाता था और उसका मुँह खुला रखा जाता था। इस तरह से मालिक गुलाम के मुंह में खाना डाल सकते थे और निकलने के लिए उसे मजबूर कर सकते थे। गुलामों को ले जाने वाले जहाज़ों पर रास्ते में समुद्री डाकुओं के हमले का खतरा रहता था, खासतौर पर अमेरिका जाने वाले जहाज़ों पर। जब हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके जहाज अमेरिका के तटों पर पहुंचते थे तो डाकुओं को इस बात का यकीन रहता था कि इस लंबे सफर के बाद जो भी गुलाम जिंदा बचे होंगे वो स्वस्थ और ताकतवर होंगे, क्योंकि कमज़ोर और बीमार गुलामों को पहले ही उनके मालिक समुद्र में फेंक चुके होंगे। डाकू जहाज पर हमला कर दिया करते थे, नाविकों को मार डालते थे और जहाज़ को अपने वांछित तट पर ले जाते थे। गुलामों को एक हाथ से दूसरे हाथ बेचा जाता था, कभी जंगलों में, कभी अफ्रीकी तटों पर, तो कभी यूरोपीय देशों और अमरीका में। हर बार दलाल उनकी कीमत ऊपर ले जाते थे। इस तरह से अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका में गुलामों की खरीद फरोख्त के लिए बड़े बड़े बाजार बन गए। बेचने से पहले गुलामों को नहलाया जाता था और उनके शरीर पर नारियल का तेल मला जाता था ताकि उनकी स्किन चमकने लगे। लड़कियों को सजाया और संवारा जाता था और उन्हें रंग बिरंगे कपड़ों में लपेट कर बड़े बड़े पिंजरों में रखा जाता था। कभी कभी एक ही पिंजरे में 150 तक गुलामों को रखा जाता था। उन्हें उम्र और शारीरिक बल के आधार पर अलग अलग गुटों में बांट दिया जाता था। गुलाम जोड़ों को आमतौर पर अलग रखा जाता था क्योंकि इससे उनके दाम कम लगते थे। गुलामों को जब पिंजरों से बाहर लाया जाता था तो उन्हें उम्र और शारीरिक संरचना के आधार पर अलग अलग कतारों में खड़ा कर दिया जाता था। उनकी देख रेख के लिए हथियारों से लैस गार्ड वहाँ मौजूद होते थे। गुलामों का मालिक कतार में खड़े गुलामों का परिचय देता था और उनकी मेहनत करने की विशेषता का बखान करता था और कीमत की घोषणा करता था। खरीदार जिस गुलाम की ओर इशारा किया करता था उसे कतार से बाहर निकाल कर उसके सामने पेश किया जाता था। खरीदार अच्छी तरह से उसकी जांच करता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी जानवर की खरीदारी के वक्त किया जाता है। उसके बाद वो गुलाम की सुनने की क्षमता की जाँच करता था और उससे कुछ शब्द बोलने के लिए भी कहता था। जब वो पूरी तरह से आश्वस्त हो जाता था तो उसकी कीमत के बारे में बात करता था। सौदा तय हो जाने पर गुलाम का मालिक उसे नंगा करके नए मालिक को सौंप दिया करता था। جن لوگوں کو امریکہ لے جایا جاتا تھا انہیں وہاں پہنچنے سے کچھ دن پہلے سے تھوڑا زیادہ کھانا دیا جاتا تھا، ان کے شریر پر تیل ملا جاتا تھا تاکہ وہ دیکھنے میں سوستھ لگیں۔ بندرگاہ پر جہاز کا لنگر انداز ہونا کسی جشن سے کم نہیں ہوتا تھا۔ کبھی کبھی جہاز پر سوار سبھی غلاموں کو پہلے سے ہی کسی ایک ویاپاری کو بیچ دیا جاتا تھا، لیکن اکثر کپتان غلاموں کی نیلامی کرتے تھے۔ سب سے پہلے وہ بیماروں اور کمزور غلاموں کو الگ کرتے تھے اور انہیں $1 میں بیچ دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد صحت مند غلاموں کی اونچی بولی لگاتے تھے۔ غلاموں کو 4 گٹوں، مہیلاؤں، پرشوں، بوڑھوں اور جوانوں میں بانٹا جاتا تھا۔ کپتان ہر گٹ کی قیمت نردھارت کرتا تھا اور پورے گٹ کو ایک ساتھ بیچ دیا کرتا تھا۔ ویاپاری غلاموں کو خریدنے کے لیے دوڑ پڑتے تھے، ان کے گٹوں میں گھس جاتے تھے اور اپنی پسند کے غلام خریدنے کے لیے آپس میں جھگڑتے تھے۔ اس طرح کے درشیہ دیکھ کر کچھ غلام اتنا ڈر جاتے تھے کہ سمندر میں چھلانگ لگا دیتے تھے۔ خریدے گئے غلاموں کو امریکی شہروں میں لے جایا جاتا تھا اور وہاں کے بازاروں میں انہیں دوبارہ بیچا جاتا تھا۔ غلام زیادہ تر دکشنی امریکی شہروں میں بیچے جاتے تھے۔ سبھی دکشنی شہروں میں غلاموں کو بیچنے اور خریدنے کے لیے بازار تھے۔ ان بازاروں میں ایک نیلامی کیندر اور غلاموں کو رکھنے کے لیے ایک عمارت ہوتی تھی، جو واسطو میں عمارت سے کہیں زیادہ ایک استبل ہوتی تھی، جہاں خریدار غلاموں کی جانچ پڑتال کر سکتے تھے۔ کچھ پریوار غلام خریدنے کا جوکھم نہیں اٹھا سکتے تھے، اس لیے ان کے پاس کبھی غلام نہیں ہوتے تھے۔ امریکہ کے شہروں تک پہنچتے پہنچتے غلاموں کی قیمت بہت ادھک ہو جاتی تھی۔ کبھی کبھی 2 سوستھ داسوں کی قیمت ایک گھر کے برابر ہوتی تھی۔ 18ویں صدی کے انت میں انگلینڈ میں کرگھے کا آوشکار ہوا، جس کے بعد افریقی لوگوں کے لیے کئی نئے نیم نردھارت کیے گئے۔ ان مشینوں نے سوت کو ادھک تیزی سے کپڑے میں بدل دیا۔ اس کے بعد دھاگے کی ڈیمانڈ آسمان چھونے لگی۔ اس کے بعد کپاس سے سوت کاٹنے کی مشین کا آوشکار ہوا، اور اس کے بعد کپاس کے بیجوں کو الگ کرنے کی مشین بنائی گئی۔ ان مشینوں کی گتی مانو کرمچاریوں کی گتی سے 50 گنا ادھک تھی۔ اب کپڑا ملوں کو ادھک کپاس کی آوشکتا پڑنے لگی۔ امریکہ کے وشال میدان کپاس اگانے کے لیے سب سے اچھی جگہ تھے، تاکہ انگلینڈ کے کارخانوں کا پہیا گھومتا رہے۔ ان وشال میدانوں پر کھیتی کرنے کے لیے شرم کی آوشکتا تھی۔ امریکی باغبانوں کے دماغ میں ایک ماتر سمادھان غلاموں کا استعمال کرنا تھا۔ کپاس کے کھیتوں کی آوشکتا کے کارن امریکہ میں غلاموں کی قیمت دن بدن بڑھتی گئی، اور داس ویاپار کا منافع بھی بڑھتا چلا گیا۔